August 7th, 2006, Rupa Goswami celebration. It's not in Gaudiya Math.
उनके पावन चरित्र तथा अमृतमय कथाओं को श्रवण किए सबके मध्य में हमें कहना कुछ भी कहना यह धृष्टता है और हम अति अयोग्य फिर भी हम दो ही सत्यगुरु की आज्ञा की शिरोधार्य करते हुए वर्णन करने का हम प्रयास चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले उनके एकांत नीज जन और अंतरंग अभीष्ट को प्रकाशित करने वाले ऐसे श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी मथुरा से पढ़ाई दुई सेनापति श्री महाप्रभु जी ने चारक और सर्वत्र भक्ति धर्म और प्रेम धर्म को वितरण करने के लिए सर्वत्र जैसे बंगाल में नित्यानंद प्रभु को भेज करके प्रचार करवाया इसी प्रकार मथुरा से पठाई लो रूप सनातन श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जी को ब्रज में भेजा जिन्होंने सर्वप्रथम आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु जी के आज्ञा रूप चार कार्य को साधन किया महाप्रभु जी ने श्री महाप्रभु जी ने आदेश दिया था कि वृंदावन में जाए तो वहां निवास करते हुए मुक्त तीर्थ वृंदावन धाम को पुनः प्रकाशित करें श्री विक्रम प्रकाश भक्ति ग्रंथ प्रणयन और भजन आदर्श को प्रकाशित करना ये चार कार्य उन्हें सौंपा श्री रूप गोस्वामी जी ने जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी से इलाहाबाद में प्रयाग में मिलकर उनसे सारी शिक्षाएं ग्रहण की जो महाप्रभु जी का अभीष्ट था उन्होंने व्यक्त कर दी और उसी को संकलन करते हुए श्री रूप गोस्वामी पा जबकि वृंदावन में आए सबसे पहले पहले उन्होंने ललित माधव और विदग्ध माधव नाटक की रचना की इसके पश्चात उन्होंने भक्ति रसायन सिंधु उज्जवल निर्मल आदि ग्रंथों को प्रणयन किया जो कि देखा जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु जी जबकि वृंदावन से लौट जगन्नाथपुरी को गए उस समय श्री रूप गोस्वामी जी यहाँ से ग्रंथ लिखते हुए रास्ते में चलते रहे और चलते चलते लिखते जा रहे हैं जबकि ललित माधव और विदग्ध माधव एक साथ में बना करके चले और जबकि रथ यात्रा में पहुंचे और महाप्रभु जी के हृदय की भावना को जान करके जो कौमारा श्लोक के भावना को जो महाप्रभु जी के इच्छा और अभिप्राय था उस अंतर जो अभिप्राय जो श्लोक के द्वारा अभिजित था उसको स्वयं प्रिय प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र जो कि कुरुक्षेत्र के भाव में विवाहित स्वयं राधा भाव में डूब करके महाप्रभु जी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं उस श्लोक को लिख करके राष्ट्रीय हरिदास ठाकुर जी के भजन कुटी के छप्पर में और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक दिन आकर के बैठे तो उनसे देख लिया श्री रूप गोस्वामी जी जब समुद्र स्नान करके लौटे उस समय आकर के जैसे ही प्रणाम किए तो महाप्रभु जी ने पीठ पर लगा दिया थप्पड़ दो बोले कि ये श्लोक तुम्हें कहां से मिला कैसे तुमने लिखा आपकी कृपा है तब उस समय महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए तब उनसे पूछा तुम इस समय क्या लिख रहे हो तब उन्होंने कहा कि मैं लिख रहा था ललित माधव नाटक जो कि सत्यभामापुर गांव में आने पर देवी सत्यभामा जी ने मुझे सपनों में दर्शन दिया और बताया कि ये नाटक को दोनों अलग अलग करो दोनों को पृथक करके रखना। उस समय मैंने ललित माधव और विदग्ध माधव बना दिया और उसमें दोनों लीला को अलग अलग किया गया। इस प्रकार महाप्रभु ने उस समय को सुन लिए, सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन सभी भक्तों को आमंत्रित करके लिया। जबकि महाप्रभु ने स्वयं मुख्य रूप में बैठकर उन कथाओं को जो जो उन ललित माधव विदग्ध माधव गंगाधर नाटक में जो प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनर्पित चरेम चिरा करुणयावतीर्णकलो समर्पयित उन्नत उज्जल रसां सभक्ति श्रिय हरि पुरत सुंदर तुदी कदंब संदीपित सदा हृदय कंदरे पुरत वह सखी नंदन। ऐसे सखी नंदन गौर हरि हम सबके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो। महाकाव्य के लक्षण में वस्तु निर्देश मंगलाचरण और आशीर्वाद, ये तीन लक्षणों को एक श्लोक में जहाँ वर्णन करते हैं और मंगलाचरण में प्रस्तुत हो, उसे महाकाव्य कहा जाएगा। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपनी पवित्र शैली में जितने भी ग्रंथ लिखे सब महाकाव्य में ही प्रस्तुत किया। और इस श्लोक को जब सुनाया महाप्रभु बोले, यार ये तो अति स्तुति, जैसे अमृत के कलश में एक बूंद सूरा डालते हैं ऐसे। तो सभी लोग बोले, ये तो अमृत के कलश में एक बूंद कर्पूर डाल दिया गया और भी अतिव सुवासित सुगंधित हो गया है। तो महाप्रभु जी की इस प्रकार वंदना करते हुए आशीर्वाद स्वरूप में निरूपण करते हुए उन्होंने नाटक को प्रस्तुत किया। और अंत में महाप्रभु जी सभी भक्तों से निवेदन किया कि आप सभी लोग अनुग्रह करें कि इसके हृदय में शक्ति संचार कर दें, जो कि भक्ति रस के पात्र हो और भक्ति रस को विस्तार करें। इस प्रकार महाप्रभु जी ने स्वयं वैष्णवों की कृपा की भिक्षा कर रहे हैं। बिना वैष्णव की कृपा के गुरु की कृपा नहीं होती और गुरु की कृपा के बिना भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा को धारण करने के लिए वैष्णव कृपा रूपी पात्र की जरूरत है और वही गुरुदेव उस पात्रता को प्रदान करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी पर अपार करुणा वर्षण किए, जो कि उनके अंतरंग भावों को उद्घाटित करते रहे। इस प्रकार श्री भक्ति स्वामी चंदन श्री उज्जल मणि ग्रंथ में उन्होंने जो कुछ वर्णन किया है, राधे कृष्ण की मधुर लीलाओं का विविचित किया है और भक्ति रक्षा में सिंधु में समस्त प्रकार के भक्तों के लिए जितने प्रकार के भक्ति रस है सब प्रकार से वर्णन किया। जैसे कि शांत दास सख वात्सल्य मधुर हास्य अद्भुत करुण रौद्र भयानक विवत्स भी सात गौण रस पांच मुख्य रस का वर्णन किए और सभी रस के विषय और आश्रयों को दिखाए गए। भक्ति रस में सिंधु में यह निर्णय किया गया कि एक तो समुद्र है, समुद्र को चार भाग में बांट दिए और चार विभाग करते हुए एक एक भाग को चार चार भाग में दिखाते हुए उनमें साधक और सिद्ध दो प्रकार की स्थिति को दिखाए गए हैं। साधक स्थिति में एक साधक भक्तों को किस रूप में आराधना करनी चाहिए, इसलिए श्रीमद् भागवत आदि से लेकर जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में भक्ति की परिभाषा दी गई है। और श्रीमद् कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने वेद वेदांत पुराण इतिहास आदि सभी शास्त्रों का सार निचोड़ कर जबकि निष्कर्ष सर्व श्रीमद् भागवत की रचना की, उस समय विशुद्ध भक्ति का वर्णन किए गए, जो कि स्वयं संपरो धर्म जतो भक्ति रधुस्तजे अहं तुक्का अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। इस प्रकार अहं तुक्की अप्रतिहता भक्ति का वर्णन किया गया है। कपिल देवहूति संवाद में भी इसी प्रकार निर्गुणा भक्ति का वर्णन किया है, अहित की अव्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तमी। भक्ति के जो आश्रय भक्त हैं, भक्तों की महिमा को और जीवन चरित्र को प्रकाशित करते हुए भागवत में दर्शाए और भक्ति का विश्लेषण करते गए, परंतु जितना भी देखा जाए वो छुपा हुआ है। इसलिए गोस्वामी लोगों ने कहा कि स्वामी ने देना वाली तारीफ सबसे गनी। ये बात उठी थी जगन्नाथपुरी में कि सिद्धर स्वामी का जितने भी हमारे गोस्वामी लोगों ने टीका किए हैं, सब जगह एक ही बात कहे हैं कि सिद्धर स्वामी पाद ने श्रीमद भागवत को खोल दिया, उनके दरवाजा खोल दिए कि उनके अंदर कैसे प्रवेश करें। वे नहीं होते तो सबको सबके लिए बड़ा ही कठिन था कि भागवत रस का अनुभव करना, उनके विचारों में प्रवेश करना, क्योंकि इतने ध्रुव ध्रुव श्लोक हैं, उनके विचारों में प्रवेश करना बड़ा कठिन था। तो ये तो चलता आया है, सभी आचार्यों ने व्याख्याएं दी है, टीकाएं की है, परंतु श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्रीमद भागवत के एक एक श्लोक को चयन करते हुए कौन से भक्ति रस का वर्णन हुआ है, कौन से श्लोक में, ये सभी कुछ प्राचीन रूप में दिखा है। ये ऐसे भक्ति रस के सजावट जो है और किसी ने नहीं किया। लोग कहेंगे कि भागवत के बड़े बड़े टीकाकार हुए हैं और उन्होंने टीकाएं की एक तरफ से शुरुआत से लेकर के प्रारंभ से अंत तक कर दिया है। और श्री रूप गोस्वामी पाद ने उच्च लीलमणि में और भक्ति रसा में सिंधु में श्रीमद भागवत के श्लोकों का उदाहरण देते हुए एक भक्ति का विश्लेषण कर दिया। और उससे आगे जब कि रस का वर्णन होता है, श्रृंगार रस का, उज्जल रस का जब वर्णन करते हैं उज्जल लीलमणि में, जैसे कि भ्रमर गीत के 10 श्लोक हैं, पर कौन जानता है कि ये कहां के श्लोक है। भ्रमर गीत है, राधा जी का विरह है, इतना सभी लोग जानते हैं। परंतु प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव मान भाव रूढ़ अधिरूढ़ इससे आगे चल करके संजल्प अजल्प विजल्प अभिजल्प आदि आदि करके 10 श्लोकों में 10 प्रकार के दिव्यवाद को दिखा दे और उसकी व्याख्या है। इसी प्रकार जो कि मानना का मान भाव की स्थिति कुरुक्षेत्र मिलन में जाकर के दिखाते हैं। गोप्य कृष्ण उपलब्ध चिराग अभिष्ट, चिरकाल के अभिष्ट श्री कृष्ण को पाकर के गोपियों की क्या दशा बनी थी, जो कि उनको कोई भी होश नहीं, स्टेचू बन गए। और ऐसे जब कि गोपियां स्टेचू बनी हुई जिनको कोई भी होश आवाज नहीं और अंतर दशा की स्थिति में भी जा करके उन्हें वो भी पता नहीं, एकदम सेंसलेस की स्थिति जैसी, जो कि और सभी लोग जिस भाव को प्राप्त करना चाहते हैं और संयोगी नित्य संयोगियों के लिए जो दुर्लभ भाव है, वह भाव मिलन के घड़े में जाकर के इतना विरह रूप में उद्दीपित होता है जो कि असंभव और चमत्कारपूर्ण। तो वहां जाकर के मानवत्व भाव को दिखाते। इस प्रकार प्रत्येक प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये सभी जो अभिव्यक्तना किए गए पुराणों में देखा जाएगा तो ब्रह्म पुराण में ही केवल उसका सूत्र केवल वर्णन हुआ है और कहीं भी रस साहित्य पर इतना विश्लेषण और अभिव्यक्तना नहीं आई। परंतु जितने भी पुराण साहित्य सब जगह ऐसे देखा जाएगा, परंतु श्री रूप गोस्वामी पाद ने उन सब को उठाया और उठा करके एक एक पर विश्लेषण करते हुए दिखा दिए। श्री भक्ति रसा में सिंधु में और श्री उज्जल भक्ति रसा में सिंधु में समस्त भक्तों के लिए वर्णन करते हैं, तो उज्जल मणि में केवल श्रृंगार रस के उपासक भक्तों के लिए, और वह भी सिद्ध भूमिका की सारी बातें लिखी गई है। इस प्रकार सिद्ध और साधक दोनों प्रकार के साधना में, जो कि दोनों प्रकार के एक साधन भक्त और सिद्ध परिकर दोनों की स्थिति को अलग अलग किए हैं, पर उसमें भी यह वर्णन करते हैं कि इसके अधिकारी कौन है। उज्जल लीलमणि पढ़ने के अधिकारी कौन, बोले एक संसारी व्यक्ति भोगी विलासी भी इसके अधिकारी नहीं है। वे सोचेंगे हमारे सामान्य स्त्री पुरुषों का भोग विलास जैसा ऐसा ही राधा कृष्ण के लीलाएं हैं, इसलिए उसको तो हाथ में नहीं लगा देंगे। दूसरी बात, जो कि अत्यंत वैराग्य वाले हैं, कठोर साधना करने वाले, कठोर वैराग्य करने वाले, उनका हृदय भी शुष्क है, वही इस भक्ति रस में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो उदासीन है, जिनके इसमें कोई रुचि नहीं, उनका भी इसमें प्रवेश नहीं होता है। जो इस रस के उपासक हैं, ऐसे उपासक भक्तों के लिए यह ग्रंथ पृथक रूप से वर्णन किया जा रहा है, गुज्जल मणि ऐसी ग्रंथ। इस प्रकार उन्होंने केवल भक्ति रस को इतना ही नहीं, उससे आगे मोहन मोदन मादन, फिर प्रेम विवर्तन, प्रेम विवर्तन के बाद में जहां पर रस आज मोहन भाव श्री रायवंद जी ने जो स्वरूप दर्शन किया, श्री रूप स्वामी पात्र ने उस स्वरूप को प्रकटित करते हुए दिखलाया कि रसराज मोहन भाव दोनों मिलित तनु श्री गौरांग श्री हरि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतरित होकर के उस भाव रस का आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पात्र ने महाप्रभु जी के जो अंतरंग भाव है, कौन सी स्थिति में है महाप्रभु, ये कौन है, रस साहित्य की साहित्य का विश्लेषण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी को समझने के लिए उस विचारों को व्यक्त किया है, जो कि और किसी के द्वारा इतना प्रकाशित नहीं हुआ जितना श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा। क्यों, चैतन्य महाप्रभु कौन सी स्थिति में, कौन है? वैसे तो सभी लोग इस समझते हैं कि गौर नारायण है, कि भगवान के वैश्य जो विलास विग्रह होंगे महाप्रभु जी होंगे, परंतु विप्रलंब रस की मूर्ति महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण ही विप्रलंब रसात्मक मूर्ति महाप्रभु बन करके आए, राधा भाव विवाहित करो, उनको प्रकाशित श्रील रूप गोस्वामी नहीं। इसलिए श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप कदाम ददाति सब पदान दिखा, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले श्री रूप गोस्वामी पाद जिन्होंने श्री विग्रह को प्रकाशित किया, और उनके मनोभीष्ट भाव को इस तरह से व्यक्त करते हुए चले गए। और भी विरह की वर्णना, और उसमें भी ललित माधव विदत्त माधव विदत्त माधव नाटक के द्वारा जो प्रेम की अभिव्यंजना की है कि राधे कृष्ण के मिलन में जितना ही मिलन दिखा रहे हैं, मिलन की घड़ी में जाकर के अनुराग की स्थिति पूर्व राग में प्रभव उत्कंठा दिखाते हुए दोनों को मिलन कराते हैं, और जबकि मिलन की घड़ी आती है वहीं पर जाकर के बाधा डाल देते हैं, एकदम सामने बाधा खड़ी करके कबरू मिले कबरू ना मिले दही मेरा घट वो विषय गोपी गणे उपपति भावे जोग माया करी बेकर आपन प्रभावे, गोपियों के उपपति भाव के द्वारा कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ अनुराग और प्रबल कृष्णमयी भावना, इसी को प्रकाशित करते हुए जो कि दोहे लागे रुला बुढ़ी बारिते नाहीं कर सकती, गोपियों के प्रेम प्रेम इतना ऊंचा जिसमें बढ़ने की कोई शक्ति नहीं है, फिर भी उनको बढ़ाते हुए ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद जहां पर स्वर्गीय और परकिया का विचार किया है, वहां पर कन्नगाओं को भी परकिया में खींच करके लाए कि ब्रज की गोपियों में से जो कन्नगाएं हैं उनमें भी परकिया भाव, तो उससे देखा जाता है स्वर्गीय परकिया का एक साधारण विवेचन होता है, जो कि स्वर्गीय विवाहिता पत्नी और परकिया प्रेम का संबंध जिसमें, इसमें ये चीज को और भी दिखलाएगी कि ये लौकिक जगत की जो स्थिति है इसके द्वारा गोपियों का कृष्ण में प्रेम है प्रति है, परंतु यहां पर जो परकिया तो दिखा रहे हैं जिसमें कि एक संबंध और एक सीमा तक होती है, मतलब प्रेम कहां तक हो एक सीमा में आबद्ध होकर के, पर सीमा को छोड़ करके चला जाए तो वहां पर भी वहां पर प्रगति अंत दिखाया। इसलिए श्रील रूप गोस्वामीपाद के विचारों को श्री गोस्वामी जी ने भी उसी तरह से व्यक्त किया है जो कि कल्याण में राजपंत कहेंगे अंत में जहां श्री गोस्वामी जी के विचारों को प्रदर्शित करा रहे हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बड़े सुंदर ढंग से सहज रूप में व्याख्यान दिए हैं कि स्वकीयों में क्या दोष होता है और प्रक्रिया का महत्व क्या है, श्री गोस्वामी जी के विचारों को दिखाए। पर श्री रूप गोस्वामी पाद के इन विचारों को लिया लेकर के दिखाते हैं कि प्रज्ञा के कितने चमत्कारिता है, जहां पर भाव की कोई सीमा नहीं होती है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने जैसे कि भाव और महाभाव की स्थिति को दिखलाने के लिए कहा कि जब जावत ससंवित दशा जावत आश्रयुक्ति युक्त हो, अनुनाद जब ससंवित दशा जावदाश्रय युक्त होता है तब भाव होता है। वो स्थिति कैसे समझ में आएगा कि ये क्या स्थिति है? यह स्थिति जैसे कि चैतन्य चरितामृत में दिखलाए गए उसी तरह से श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने दिखाया कि ससंवित दशा केवल हृदय में ही अनुभव होता है, वो बाहर में व्यक्त नहीं कर सकते या कर सकती। और भावों की जितनी स्थिति है साधक के कोई कंट्रोल में नहीं होता, सारे कंट्रोल को सीमा को पार करके भाव अपने से ही भाव उत्पत्ति और भाव शांति के भाव उत्पत्ति भाव सावल्य भाव शांति भाव संधि परस्पर भावों की जो संधि होती है सम्मिलन होता है उसको भाव संधि कहे जाते हैं। एक भाव से दूसरे भाव में परिवर्तित हो जाना तो ये भाव सावल्य है, फिर परिभावों का एक साथ में शांति हो जाना विराट हो जाना, तो इसमें अब कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा है कि महाप्रभुर्देह प्रभुर्देह इक्ष्व ताहे मत्त गज भावगण जैसे करे बने गवन। महाप्रभु शरीर कैसा है कि इक्ष्व वन गन्ने का खेत, उसमें एक मत्त हाथी घुस जाए और कितने मत्त हाथी हैं, पागल हाथी यदि घुस जाए तो एक भी शुगर कैन यानी ये गन्ना कोई भी बचेगा नहीं, सारा मिट्टी में मिला देगा। तो उसी तरह से महाप्रभु जी के शरीर में ये जो भाव समुदाय विकसित होते हैं प्रकाशित हो रहे हैं ये अपने कंट्रोल में अपने सीमा में नहीं रहा कि प्रभु जी ने बताए करे बने रवन। प्रभु जी का शरीर कभी कुर्माकार हो रहा है, कछुए जैसे पिंडाकार स्वरूप में, कभी लंबे बन करके इक्के साथ लंबे, इस तरह से जो भाव किसी कंट्रोल में नहीं है स्वयं ही स्वयं के द्वारा कंट्रोलित होता है। इसलिए सीमा को पार करके जब ऐसे भाव उदय हो तब ससंवित दशा जावदाश्रयुक्ति युक्त होता है, इसलिए जितना चाहे उतना ही प्रकाशित हो, यह स्थिति भाव की होती है। और उस भाव से जब आगे चले तब राधा जी की स्थिति आ जाती है, महाभाव की स्थिति। उस समय समस्त ब्रह्मांड को विक्षुब्ध कर दे, सभी को रुला दे, सबको अपने वश में कर ले और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय हो जाए, ऐसी ऐसी विचित्र स्थिति आ जाए जो कि महाभाव की स्थिति में है। और वही महाभाव की मूर्ति राधा जी है, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रूप के अवतार यानी राधा जी के सौंदर्य के रूप के अवतार जो कि उनके अंतरंग घनिष्ठ जन है, जो राधा जी के अंतरंग भाव को समझकर वैसे ही व्यक्त करने वाले पर वैसे ही सेवा करने वाले। इसलिए यहां पर वर्णन होता है ससंवित दशा जावत आश्रय वृत्ति युक्त भाव। इसलिए प्रारंभ से जब देखा जाएगा कि श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, ये सभी स्थितियों का वर्णन क्रम बाई क्रम और सिलरों को साई बात नहीं किया और उसमें भी ये एक विविचार करते हुए